Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Hamare saath khabron par charcha ke liye aaj studio mein aamantrit hain वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
थैंक यू मनोज.
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटीज एंड ऑन अ फ्लैट नोट. सेंसेक्स एड्स 63 पॉइंट्स. निफ्टी 50 रैप्स अप द सेशन एट 25,212. And gold and silver continue to shine, trading with gains.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की मंजूरी दी. घरेलू शेयर बाजार में बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ कारोबार. फ्लैटिश रहे सेंसेक्स और निफ्टी. हालांकि सेंसेक्स 63 अंक उछला, निफ्टी 50 25,212 दर्ज हुआ. और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की चमक में तेजी जारी. लाभ के साथ चल रहा है कारोबार. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है. ये योजना 2025-26 में शुरू होकर अगले 6 वर्ष तक चलेगी. इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में 100 जिलों की पहचान की जाएगी. पहचान के लिए 3 प्रमुख संकेतक तय हुए हैं, जिनमें जिले में कम उत्पादकता, फसल की कम सघनता और ऋण वितरण कम होना सम्मिलित है. श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं और अन्य राज्य योजनाओं के सम्मेलन के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी. श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से देश के 1,70,00,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.
सुषमा जी, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है. गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है. राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें. जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी.
जैसा कि मैं कह रहा था आपसे, मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि ये एक गेम चेंजिंग योजना है, और यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि एक महत्वाकांक्षी योजना देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी, जिसमें कई सारे मानक तय किए गए हैं. कुल मिलाकर मैं समझना चाहूंगा कि किसानों को किस रूप में इससे लाभ होने जा रहा है.
देखिए, हमारे देश में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं किसानों के लिए, और ये है कि अलग अलग वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू ये स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है. और यहाँ जो फैसला लिया गया है ये है कि ये जो सारी स्कीम्स और ये डिपार्टमेंट्स जो जिसको हम कहते हैं एक साइलो, सब अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, ये सारी इकट्ठी होके एक ही जगह एक ही स्कीम के तौर से ये इनका फायदा मिलेगा किसान को. अब जैसे आपने कहा 36 स्कीम्स हैं और 11 डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब पहले तो ये एक स्कीम या दो तीन स्कीम्स एक डिपार्टमेंट का हिस्सा होता और वो किसान के पास जाता और बोलता कि ये आपका आपको फायदा होगा, आप कीजिए। तो ये अलग अलग तरीके से पीसमील तरीके से ये स्कीम्स का फायदा जो है किसान से को मिलता। लेकिन अब जो है ये सारी स्कीमें एक ही कॉम्प्रहेंसिव वे में एक ये जो सिस्टम है उसके थ्रू किसान को फायदा, ये बहुत मतलब बड़ी मैं समझती हूँ गेम चेंजर बिल्कुल है। और ये योजना है ये इन क्षेत्रों में इसका लाभ पाया जाएगा जबकि बहुत लो प्रोडक्टिविटी है और लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो सबसे सबसे लो उन्होंने ये चुने हैं ये जो क्षेत्र हैं और जहां इन चीजों जहां क्रेडिट की भी यूटिलाइजेशन कम है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है उन्हीं को जहां सबसे कम प्रोडक्टिविटी है वहां इसका फायदा हो, वहां प्रोडक्टिविटी का बढ़ावा हो। और इसमें हमें ये भी याद रखना है कि कई जो क्रॉप्स हैं उनमें हमारे देश की प्रोडक्टिविटी काफी धीमी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो हमें ये जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफी फोकस करना चाहिए और इससे जो हमारी खैर हमारी जो कृषि क्षेत्र में काफी खामी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और एक तो वो है कि हमारी बिल्कुल छोटे छोटे जो होल्डिंग्स होते हैं, तो छोटे होल्डिंग्स होने के बावजूद भी किसान को अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसको अपने उत्पादन का बहुत ज्यादा फायदा होगा।
सुषमा जी, right now is a kharif season, the monsoon season, where typically a rice, sugarcane, jute, cotton, which is the seeds are sown, in order to be grown, and the yield comes much later. So if you look at the period right now, and then of course from October to March you have the rabi season, the winter season right now. So how do you see this yojana, this scheme helping farmers in the present time? Clearly disbursement of credit where you know the money would be spent on inputs of agriculture. What kind of decision do you see being taken by farmers now and how do you see the productivity in this era of climate change?
You see, Arjun, you are very right. The scheme has come in a very timely way. July is the time when you are having paddy transplanting going on, and this is the time when the monsoon has come, and this is the time when the farmer needs his inputs. He's looking for fertilizers, he's looking for pesticides, and also irrigation facilities. But this is the time when, if he is able to get the added advantages of these schemes which the government has already formulated. These are existing schemes, but they will be coming to these farmers who already are, you know, are not able to produce at a very high level. They're going to come in one comprehensive way. They will get the benefit. They will be able to raise productivity, raise their credit utilization, and increase cropping intensity. So the idea is that hopefully these particular districts will increase their output considerably so that the overall production, agricultural production, goes up at the end of this season.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निवेशकों की आखिरकार खरीदारी बनी रही और प्रमुख सूचकांक मामूली लाभ के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोरी का संकेत मिला जिसका असर निवेशकों पर थोड़ा बहुत देखा गया। कुल मिलाकर यदि बाजार के मूड को फ्लैटिश कहें तो अधिक उचित रहेगा। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 63 अंक यानी 0.08% की बढ़त लेकर 82,634 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 16 अंक यानी 0.06% लाभ के साथ 25,212 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.28% की तेजी देखने को मिली।
Benchmark domestic equities ended on a flat note today amid weak global cues that included cautious sentiment in the Asian markets following a slight uptick in US inflation in June. The 30-share BSE Sensex settled at 82,634, adding 63 points of 0.8%, while the NSE Nifty 50 wrapped up the session at 25,212, climbing 16 points of 0.06%. In the broader market, the mid-cap index rose 0.10%, while the small-cap index added 0.28%. And a minor correction, the BSE Sensex added 63 points or 0.08%.
यदि हम सेंसेक्स पैक पर नजर डालें तो 30 में से 15 कंपनियों के शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए, यानी 50-50 रेशियो रहा. लाभ उठाने वालों में सबसे आगे रही कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके शेयरों में 2.1% की वृद्धि हुई. टेक महिंद्रा के शेयर 1.94% ऊपर आ गए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1.81% का मुनाफा हुआ. उधर घाटा उठाने वालों में सबसे आगे रही एटर्नल कंपनी, जिसके शेयर 1.58% घाटे में रहे. सन फार्मा और टाटा स्टील के शेयर दोनों को 1.1% का नुकसान उठाना पड़ा.
इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 16 सेक्टर्स एंडेड हायर फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज. Focused IT rose 0.67%, information technology added 0.66%, and services advanced 0.55%. Among the laggards, metal sector slipped 0.61%, commodities lost 0.37%, while capital goods shed 0.24%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,338 companies advanced, shares of 1,718 companies declined, while shares of 162 companies remain unchanged. At the National Stock Exchange, 78 companies hit their 52-week high, while 22 companies hit their 52-week low.
रुपए पर नजर डालें तो रुपया आज 13 पैसे कमजोर हुआ एक डॉलर की तुलना में, और 85.94 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.58 पर चल रहा था. सुषमा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. कुल मिलाकर फ्लैटिस्ट टोन रहा, कल हमने थोड़ी तेजी देखी, उसके पहले 4 सत्र में गिरावट का दौर चला. क्या मूड आपको दिख रहा है बाजार का आज?
देखिए, वो जो आप फ्लैट कह रहे हैं बिल्कुल इस वजह से है कि मार्केट की कुछ तो कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेंड्स अभी आ रही हैं. एक तो ग्लोबल क्यूज जो है वो काफी वरीसम है. एक जो ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसीज हैं उनका अंत नहीं लग रहा अभी भी. अभी यूएस राष्ट्रपति ने कहा है कि वो रशिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे 100%, जो हमारे देश को भी लग सकती हैं, और उसके ऊपर से वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर 30%, मेक्सिको के ऊपर 30% टैरिफ्स. तो उनकी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, तो उसमें जो हलचल है ग्लोबली वो चल रहा है. और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी कम नहीं हो रही. गाजा में जो स्थिति थी वो भी मतलब नाजुक अभी है. यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार है उसके ऊपर कोशिशें जो थी कि ये बंद हो जाए वो बिल्कुल नाकाम हुई हैं. तो जियोपॉलिटिकल ग्लोबली जो क्यूज हैं वो काफी कंसर्निंग है, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी दिख रही है. अगर आप देखें तो मानसून की जो आउटलुक अच्छी है. अभी तक भी मानसून बारिश सब जगह ज्यादा ही है, फ्लड्स बहुत जगह आ रही है, लेकिन ये फसल के लिए बहुत अच्छा है. जो जितनी बारिश हो रही है मानसून आउटलुक अच्छा है, रेवेन्यू कलेक्शंस अच्छे हैं, जीएसटी कलेक्शंस अच्छे हैं, तो ये सारी जो और कंजम्पशन पेट्रोलियम कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो सारी जो हमारी जो इंडिकेटर्स हैं हमारी डोमेस्टिक इंडिकेटर्स वो बहुत अच्छी हैं. तो ये जो मैं समझती हूँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी जो ट्रेंड्स दिखाई दे रही हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट बढ़ता है और थोड़ा सा नीचे होता है.
Do you feel that the SEBI regulations on options trading for Tuesday and Thursday, if you look at the weekly expire for NSE and BSE contracts, has something to do with reducing the volatility in the market and, you know, kind of retail spend in this type of speculative trading has led to more value investing in the market? Because, for instance, if you look at companies with their quarterly results right now, the second quarterly results, just as an example, like Tech Mahindra had positive results and their Shares also went up by 2%. So do you feel that value investing is something that your typical retail investor is looking at right now?
Well, I think value investing is what the retail investor is always looking at. Of course, the SEBI's actions lately have been to, in fact, they have been, I think, a little more stringent than the previous, when the previous SEBI chief was there. And probably it is all to the good, because there has been so much of trading in derivatives and speculation. And, you know, as we are all aware, this is a new breed of young retail investors who are in the market. And they are being guided a lot by internet platforms who, you know, tell them to go in a particular direction. And derivatives is, of course, a very risky area. So I think SEBI and even the central bank has been talking about this, the fact that we have to be really careful about speculative investments. So I would say that, you know, SEBI's actions are all to the good. And of course, on value investments, I would agree with you. I think value investments is what, you know, the retail investor is looking for now, right now.
So a hedge fund like Jane Street and the action taken by SEBI, we saw FIIs today being the net sellers to the tune of 1,800 crore rupees. And again, the net buyers are typically your DII. So you think that maybe a lot of regulation is, you know, sort of ensuring that speculative money does not enter the market.
Yeah, well, as far as Jane Street is concerned, of course, they are defending their, you know, their actions. And they say that, you know, SEBI doesn't really understand the kind of work that we are doing. But I think SEBI has taken a very cautious approach. And they have, of course, asked Jane Street to deposit some amount before moving ahead in the market. And I think I think it's a good signal that SEBI has sent to the market.
A word about the US-India trade deal under the bilateral trade agreement. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal is in the United States of America right now, leading the trade negotiators. But it's not going to be easy with, you know, 10% baseline tariff, 26%, which has been imposed on India, and now it's with effect from. So, I mean, other nations have faced challenges as well. How do you see this going India's way to a great extent? And of course, it'll reflect in the economy in terms of our net exports and corporate performance as well.
Yeah, of course. You're very right. It will have tremendous impact. But I think one of the plus points in the India-US negotiations is that nothing has been announced so far. I mean, if you see the negotiations between US and other countries, it has been done in a very rapid way. Whereas the India-US negotiations have been going on for, you know, over a month now, more nearly 2 months. And even now, they, you know, deadline was supposed to be July 9th. Now the deadline has moved to August. And actually, the negotiators are saying that our final trade agreement will be ready only in September. And this might be an interim one. And I think that the longer one takes to finalize this kind of a trade agreement, the better it is, because then you get something that is more structured and nothing that is on a very ad hoc or interim basis. And that's what it has been as far as the US has been doing with other countries. The other thing that is a plus point for us is, at least what media reports are saying, is that India has taken a very strong line on certain sectors of the economy. For instance, agriculture and dairy, they have said that these are red lines for us. We have to protect our subsistence farmers in the area of agriculture, and as well as in dairy, because in dairy we have, although you may have big companies like Amul, Mother Dairy or Nandini down south, these are all, you know, the apex of a large number of very small cooperative dairy farmers. And so even our dairy farmers are very small. So this sector needs to be protected. India is trying to do that. This is going to be a very, very tough negotiation. But I think that the longer it takes, the better it is.
So aluminium and steel are our key exports. So to the U.S., Nifty Metal has taken a hit, 0.54%, but it's been gradually falling.
Yes, that is an area which has definitely had an impact. Copper is another one, of course, where he has Trump has imposed a 50% tariff. But the anticipation is that in the case of copper, I mean, we simply will not export to them, and that will be used within the country. But yes, steel and aluminum is an area that is going to affect us.
आइए अब चलें वैश्विक शेयर बाजार की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिलाजुला रुख दिखा है. हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक बिकवाली के दबाव में 0.3% घाटे में रहा। जापान के निक्केई 225 में 0.04% की गिरावट हुई। बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.03% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.03% की गिरावट हमने देखी। उधर मांग निकलने से सिंगापुर का स्ट्रीट टाइम्स इंडेक्स 0.3% लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो प्रमुख बाजारों में थोड़ी तेजी समाचार लिखने तक दिख रही थी। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.2% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.35% के आसपास वृद्धि थी। फ्रांस का कैक 40 0.07% बढ़त के साथ चल रहा था।
Moving on to the U.S. stock markets, U.S. markets turned in a mixed performance on Tuesday, witnessing a rally in tech stocks even as investors reacted to an uptick in June inflation numbers and earnings reports from some major financial institutions. The Dow Jones Industrial Average fell 0.98% to close at 44,023 and the S&P 500 shed 0.4% to settle at 6,244. However, the Nasdaq Composite Index rose 0.18% to finish at a record high of 20,678. The tech-heavy index got a boost following a 4% jump in the shares of NVIDIA. The semiconductor market announced it had received assurance from the White House it can resume shipments of its H20 AI chips to China. Meanwhile, consumer price data released on Tuesday showed that annual inflation in June was 2.7%, up from 2.4% in May, as President Trump's tariffs started reflecting in higher prices for goods, including coffee, toys, and clothing. So clearly, imports from China have been limited because of the high tariffs imposed on them, even though it's been reduced from an astronomical high tariff rate to what they call as manageable. 2.7% for June, food inflation, core inflation, all of that being affected in the U.S., how pressured is the U.S. right now to strike trade deals with countries, especially key importing countries?
I think, they do have to strike trade deals. But I think that, as they strike the trade deals where apparently they have got victory, and you can put that in inverted commas, that they are able to levy high tariffs on these countries. But I would say that's a kind of a self goal, because once you are importing products from these countries where you're levying Indonesia's 19%, Vietnam 25%, 50% from other countries, 30% from EU, you're importing these goods. You may be getting that money into the exchequer, but prices of all these products go up in American markets. The American consumer is going to face inflationary pressures, and it has started. This 2.7% is just the beginning. Your story says coffee, toys, and clothing. Now, toys and clothing comes in a large measure from China over there. China, Vietnam, Indonesia, these are all countries from which they get a large percentage of these items. And therefore, I think in the days going ahead, they may strike deals which are apparently a kind of victory in terms of high tariffs, but I think in the long run, not even in the long run, in the short run, they are going to find a very adverse impact on the American economy.
We're seeing the US dollar index also at 98.58. It was 97 before. Is it a reflection on their imbalance of trade right now?
Yes, I think so, definitely. It is, but it's going to, I don't think you won't have the impact so quickly. It will take time, because once these deals are finalized and once things, imports start coming in onto the retail shelves of the supermarkets, that's when you're going to find the impact. And that will take 1 or 2 months, I think.
In more news, U.S. President Donald Trump has announced a new trade agreement with Indonesia, lowering the proposed tariffs on Indonesian goods to 19% in exchange for full access for American firms. Indonesia, in turn, will buy $15 billion in U.S. energy, $4.5 billion in agricultural goods, and 50 Boeing jets. The terms of the deal were not immediately confirmed by Indonesia. However, President Subianto called it a new era of mutual benefit. Later, talking to reporters in Washington, President Trump said India is working on a trade deal similar to the one signed between the US and Indonesia. New Delhi and Washington are negotiating to arrive at a trade deal before the 1st of August deadline set by the US president. Very interesting that our listeners on Akashvani have some idea of what a trade deal of mutual benefit looks between US and Indonesia. How do you see a mutual benefit trade deal between India and the US?
Well, I would say it certainly shouldn't be like the one with Indonesia or the one with Vietnam, which I mentioned just now, that, you know, America gets easy access into the market. And I think that's not possible in our country. We are we are rather rigid as far as tariffs are concerned. And I can understand that tariffs will definitely be brought down in areas where they can be brought down. You know, you can reduce it, some areas of auto components and electronics goods, as well as certain areas even of agriculture. For instance, in the area of nuts and some fruits, where we have already, we are prepared to bring down the tariffs, and this will not impact our own domestic producers. But, Indian negotiators, trade negotiators are not likely to cross these red lines. This is, it will be, of course, apart from being economically unwise, it would be politically unwise. And I doubt if we're going to get that kind of an unequal trade agreement.
So is market access one way of saying bypassing foreign direct investment regulations?
No, I don't think so. You market access is something very different because, you know, you're importing goods straight off. Foreign direct investment is, again, is something completely different.
In more news, the volume of world goods trade grew by 3.6% quarter on quarter in the first quarter of 2025, following a surge in imports in North America in anticipation of higher tariffs in the U.S., the WTO said on Tuesday. The report added that there was a 5.3% year-on-year increase in the same period. Though the first quarter merchandise trade volume growth was stronger than WTO's most recent forecast, however, economists expect the expansion rate to slow off later in the year as fully stocked inventories and higher tariffs weigh on import demand. The new tariffs announced by the US on 2nd April at the start of the second quarter were widely anticipated, allowing importers to move purchases forward to avoid paying higher duties at a later date, according to the report. There were significant disparities across regions in January to March quarter of 2025. North America recorded the strongest quarter-on-quarter import growth of any region by far at 13.4%, followed by Africa at 5.1%, and South and Central America and the Caribbean at 3.6%, the Middle East at 3%, Europe at 1.3%, and Asia at 1.1%.
यहाँ पर बहुत छोटा सा सवाल, क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, खासतौर से जो 3.6% की वैश्विक कारोबार में वृद्धि हुई है, बस दो शब्दों में?
मेरे ख्याल में इट रिफ्लेक्ट्स दी टैरिफ कंफ्यूजन जो अमेरिका ने शुरू किया है.
Let's have a look at the oil market now. Crude oil was trading in negative territory today. Brent crude was trading at $68.09, down 0.90%, while WTI crude was down 1.04% at $65.83 per barrel when reports last came in. And let's now move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.48% higher at 98,680 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was 1.47% up at 114,940 rupees per kilogram a short while ago.
आइए आपको MCX भी लिए चलें. MCX पर अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोना का मूल्य 0.28% बढ़कर 97,479 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.37% लाभ के साथ 112,903 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी. यदि कुल मिला के हम ये मान के चले कि सोने चांदी में थोड़ी सी चमक तेज होती जा रही है, बहुत संक्षेप में.
अब देखिए, ये अभी भी
ऊपर जा रहा है,
हाँ, सेफ हेवन एसेट लगा हुआ है. हाँ.
जी, बस यही पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
एंड बिफोर वी क्लोज, reminder of the headlines. Union Cabinet approves Prime Minister Dhanya Krishi Yojana to enhance agricultural productivity. Benchmark domestic equities end on a flat note. Sensex adds 63 points. Nifty 50 wraps up the session at 25,212. And gold and silver continue to shine, trading with gains. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.